इनाया बड़े ही शातिर अंदाज में सबूत के साथ सिया का असली चेहरा सबके सामने ले आई थी और उसके पेरेंट्स को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे सारे गेस्ट निकल चले गए। अब वहां बस कायरव की फैमिली, खुद कायरव और इनाया के अलावा पार्टी स्टाफ मौजूद था। इनाया ने माइक स्टाफ को दिया और मिस्टर एंड मिसेज रायचंद के सामने आकर खड़ी हो गई। मिसेज रायचंद सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी, वहीं मिस्टर रायचंद भौहें सिकोड़े उसे घूर रहे थे। पता नहीं उन्हें उससे क्या प्रॉब्लम थी। इनाया ने बारी बारी दोनों को देखा और व्यंग्य से मुस्कुराई। अजीब बात है ना, यहाँ आपके बेटे पर एक लड़की रेप का इल्ज़ाम लगा रही थी, उसके कैरेक्टर और आपकी परवरिश पर सवाल उठा रही थी, उसे मॉन्स्टर बुला रही थी और आप दोनों चुप से खड़े बस तमाशा देख रहे थे। उस लड़की को आप अपनी बहू से ज़्यादा अहमियत देते हैं और आज वही लड़की इस परिवार की धज्जियाँ उड़ा रही थी, लेकिन आपके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। क्या इसका मतलब ये है कि आप भी उसकी झूठी बातों में फंस गए थे, मान लिया था कि वो जो कह रही है वो सच है, कायरव सच में गिल्टी है, इसीलिए आपके पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था, या फिर आपकी खामोशी की वजह कुछ और ही थी? इनाया ने गहरी निगाहों से उन्हें देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी हुआ वो सब आप दोनों ने ही प्लान किया था? आप भी सिया के साथ इन सब में मिले हुए थे, आप भी चाहते थे कि वो इस बात का फ़ायदा उठाकर कायरव को मजबूर कर दे और उन्हें मुझसे डिवोर्स लेकर सिया से शादी करनी पड़े? आप दोनों तो हमेशा से यही चाहते थे कि मुझे कायरव की ज़िंदगी से बाहर निकालकर सिया को उनकी ज़िंदगी में शामिल करे। इतना ही नहीं, अगर आपका बस चलता तो आप तो मुझे कभी अपने बेटे की ज़िंदगी में आने ही नहीं देते। बहुत पहले ही कायरव की शादी सिया से करवा चुके होते, लेकिन आपके बेटे ने आपके बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया, मुझे अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आया जिससे आप दोनों नाराज थे। आप लोगों ने तो अभी तक मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाया भी नहीं है। आज भी आप कायरव का रिश्ता सिया से जोड़ने के लिए डेस्परेट हैं, जिसके लिए कोशिशें तो आप दोनों ने भी कम नहीं की। मुझे तो लग रहा है जैसे ये भी उन्हीं में से एक कोशिश है। ये तुम क्या कह रही हो, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिसेज रायचंद बुरी तरह चौंकी, जबकि मिस्टर रायचंद अब भी इनाया को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जिससे वो बेहिसाब नफरत करते हैं और उनका बस चले तो अभी ही उसे जान से मारते। ओह, तो आप सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन आपके हस्बैंड को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। इनाया ने तिरछी निगाहों से मिस्टर रायचंद को घूरा। क्यों ससुर जी, क्या आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे? वैसे आपका गुस्सा देखकर मुझे लग तो ऐसा रहा है जैसे मैंने आपके प्लान की धज्जियां उड़ा दी। ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या ये बात सच है? आपको ही मेरे और कायरव के साथ रहने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या सिया के साथ मिलकर आपने ही ये प्लानिंग की थी? मैं तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को अपने बेटे की जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। तुम्हें उसकी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मिस्टर रायचंद का अंदाज गुरूर से भरा था। उनका जवाब इस बात का सबूत था कि सिया के साथ इस प्लानिंग में वो भी शामिल थे और उन्हें कोई अफसोस या पछतावा भी नहीं था। उनकी नज़रों में उन्होंने जो किया वो सही था। कायरव का चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो भावहीन सा उन्हें देख रहा था। मिसेज रायचंद खुद उनकी बात सुनकर हैरान थी, जबकि इनाया के होंठों पर दिल जलाने वाली मुस्कान थी। तो आप ये मानते हैं कि सिया के साथ मिलकर आपने ये सब इसीलिए प्लान किया था ताकि कायरव को मुझे छोड़कर सिया से शादी करने के लिए मजबूर कर सके? क्योंकि ऐसे तो वो आपकी बात मानने नहीं वाला, इसीलिए आपने ये घटिया चाल चली। वैसे ससुर जी, प्लानिंग आपने बढ़िया की, बस कुछ कमियां रह गईं और आपका एक और प्लान मेरे सामने पूरी तरह फेल हो गया। हर बार की तरह इस बार भी आपकी साजिशें हमारी मोहब्बत के आगे हार गईं और हमारे रिश्ते को तोड़ने के आपके इरादे ध्वस्त हो गए। मैं जानती हूँ इसके बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं, लेकिन अगली बार जब कोशिश करें तो प्लानिंग जरा दिमाग से कीजिएगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और तैयार रहिएगा अपनी हार के लिए, क्योंकि आप कितनी ही अच्छी कोशिश क्यों ना करें, मैं कभी आपको आपके घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। हर बार जैसे तब भी आपको मुँह की खानी होनी, आप और आपकी वो पार्टनर कभी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। इनाया का कॉन्फिडेंस, उसका किलर अंदाज देखकर मिस्टर रायचंद गुस्से से बिलबिला उठे। उन्होंने जैसे ही जबड़े भींचते हुए इनाया के तरफ कदम बढ़ाए, कायरव उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। जिस तरह उसने मिस्टर रायचंद को आंखें दिखाई, उसने उनके बढ़ते कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं कि आप हमेशा से मेरा रिश्ता सिया से जोड़ना चाहते थे, इनाया से शादी करने के मेरे डिसीजन के अगेंस्ट थे, जिसकी एक वजह मिस्टर मल्होत्रा से कैंसिल हुई डील और उसकी वजह से होने वाला लॉस था, लेकिन मैं उस लॉस को कॉम्पेंसेट कर चुका हूं। उसके बाद भी आपको हमारे साथ रहने से इतनी प्रॉब्लम है कि आप अपनी जिद पूरी करने के लिए इस हद तक गिर गए, भरी महफिल में अपने ही बेटे के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए, मुझे रेपिस्ट बना दिया। कायरव की आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर शिकायत थी, दुख उसके लहजे में झलक रहा था, उसके थरथराते होंठों से दर्द भरी आह निकली। मुझे लगा था कि आप कभी ना कभी तो हमारे रिश्ते को अपना लेंगे, इनाया को मेरी वाइफ और रायचंद खानदान की बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, मेरी खुशी के लिए सिया को इस घर में लाने की अपनी जिद छोड़ देंगे, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। आपको इतने अच्छे से जानने के बाद भी आखिर मैं आपसे ये उम्मीद रख भी कैसे सकता था? आपके लिए तो हमेशा से बस अपनी इच्छा, अपनी जिद, अपनी इज्जत मायने रखती थी, और आज सिया से मेरी शादी करवाने की अपनी जिद पूरी करने के लिए आपने अपनी उस इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। मैं समझ गया कि आप कभी नहीं बदल सकते। मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़ रहा हूँ। अब मैं और मेरी वाइफ दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप हमारी लाइफ से दूर रहें। जब तक आप ये याद रखेंगे, सिर्फ तभी तक मैं आपकी कंपनी संभालूंगा। जिस दिन आपने फिर से अपनी कोई घटिया चाल चली, मैं अपने शेयर्स बेचकर रायचंद एम्पायर आपके हवाले कर दूंगा। और याद रहे, मुझे आपकी कंपनी की नहीं, आपकी कंपनी को मेरी जरूरत है। वो आज जिस पोजीशन पर है, उसे वहां मैंने पहुंचाया है। मुझसे टकराए तो अपने जमे जमाए बिजनेस को खाक में मिलते देखने के लिए भी तैयार रहिएगा। कायरव ने अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर मिसेज रायचंद चौंक गई। लेकिन कायरव का सख्त चेहरा देखकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। किलर अंदाज में उसने मिस्टर रायचंद को धमकाया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस चुप खड़े नफरत भरी नजरों से इनाया को घूरते रहे। उनकी नजरों में इन सब के लिए वही जिम्मेदार थी। उनकी ये चुप्पी नॉर्मल नहीं थी, इसके पीछे एक भयानक तूफान छुपा था। कायरव ने इनाया का हाथ पकड़ा और पलटकर घर से बाहर जाने लगा। अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से दादी की सख्त रौबदार आवाज आई, रुक जाओ कायरव। कायरव का पैर हवा में ही रुक गया, इनाया के कदम भी ठिठक गए। दोनों ने पलटकर देखा, दादी अपने रूम के बाहर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। शायद यहाँ जो हुआ वो सब उन्हें पता चल गया था।
दादी प्लीज, इस बार नहीं। डैड ने जो किया वो माफी लायक नहीं है। उन्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। जब तक हम इनके साथ रहेंगे, उनकी हमें अलग करने की कोशिश ऐसे ही चलती रहेंगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी और इनाया की खुशियाँ, हमारा रिश्ता, इनकी साजिशों का शिकार बने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों यहाँ कभी नहीं आएंगे, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं तो कंपनी भी छोड़ देता, इनसे पूरी तरह से अलग हो जाता, लेकिन उस कंपनी को दादू ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहता कि उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाए। इसलिए मैं कंपनी नहीं छोड़ रहा, लेकिन अब यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। कायरव अब भी अपने फैसले पर टिका था। वो बेहद सीरियस था और उतना ही दुखी और नाउमीद भी। दादी अब भी खामोश खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी, वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और आंखों की पुतलियां अविश्वास से फैल गईं। टू बी कंटिन्यूड।